Yashodanam dana brajajanaranjana Yashodanandana brajajanaranjana Yamunatira banachariyam Yamunatira banachariyam Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Santopadhi, Ananta Koti Vaishnava Vrindiki, Namachari Shila Haridas Thakurki, Krenta Prahoi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Srivasa Bhigor Bhakta Vrindiki, Sri Radha Krishna Gopinath Sham Kundrada Kundagiri Dor Dhanki, Vrindavan Dham Ki, Naudit Mayapur Dham Ki, Jagannath Puri Dham Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Ganga Mayi Ki, Yamuna Mayi Ki, Samaveta Bhakta Vrindiki, Harinam Sankirtan Ki, All Glory to Assembly, All Glory to Assembly, All Glory to Assembly, All Glory to Assembly, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhagavati Naishwiki Shri Bhagavat Tisharsan Sarsanya Shlok Namur Chandis Udhava Uvacha Nanu te tattva samradhya Vishihi kaushravantike Pakshad bhagavato vishto Martya lokam jihasata Udhava uvacha Nanute tattva samradhya Rishihi kaushravantike Sakshad bhagavato dishto Martya lokam jihasata Udhava uvacha Manute tattva samradhya Rishihi kaushravantike साक्षात् भगवतो दिष्टो मर्त्यलोकं विहासता। उद्धव ने कहा ननु, लेकिन ते आपके तत्व साम्राज्य जो दिव्य ज्ञान के लिए पूजनीय है, दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूजनीय है, ऋषि ऋषि कौशरावह कुशाल के पुत्र मैत्रेय अंतिके निकट रह रहे हैं, साक्षात साक्षात भगवता भगवान द्वारा आदिष्ट आदेश दिया गया मर्त्यलोकम मर्त्यलोकम जिहासता छोड़ते हुए अनुवाद सुन सकते हैं। ऐसी भक्ति विधान श्री उद्धव जी ने कहा कि आप महान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, वे पास में ही हैं और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान की। तात्पर्य, हालांकि कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान विख्यात क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रमण अपराध से बचना चाहिए। शास्त्र के अनुसार मर्यादा व्यतिक्रमण का अर्थ है कि किसी बड़े महात्मा के से ज्यादा अपने आप को दिखाना है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को बहुत ध्यान करना चाहिए मर्यादा व्यतिक्रमण के नियम का अवलंबन नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन की आयु ऐश्वर्य यश आशीर्वाद सब खो बैठता है। दिव्य ज्ञान में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की टेक्निक पता हो। उद्धव जी दिव्य ज्ञान की सब टेक्निक को जानते थे और उन्होंने विदुर जी को सलाह दी कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विदुर उद्धव जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, परंतु उद्धव जी ने यह पोस्ट स्वीकार नहीं किया क्योंकि विदुर उम्र में उद्धव के पिता के समान थे, और इसलिए उद्धव इनको अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। विशेष करके जब मैत्रेय यहाँ का निकट ही थे, नियम यह है कि एक महात्मा की उपस्थिति में, एक बड़े महात्मा की उपस्थिति में व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति योग्य क्यों न हो। उद्धव जी ने निश्चय किया कि विदुर जैसे व्यक्ति जो कि उम्र में भी बड़े हैं उनको मैत्रेय के पास भेजा है, जो कि उम्र में बड़े थे, और साथ साथ भगवान ने स्वयं इस भौतिक दुनिया को त्यागते समय उनको ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि उद्धव और मैत्रेय दोनों को भगवान ने ज्ञान दिया था, दोनों का अधिकार था विदुर का गुरु बनने का और किसी का भी गुरु बनने का। किंतु कि मैत्रेय उम्र में बड़े थे, उनका पहला अधिकार था गुरु बनने का, विशेष करके विदुर के लिए, क्योंकि उद्धव से भी बड़े थे उम्र में। व्यक्ति को गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रसिद्धि के लिए, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए गुरु बनना चाहिए। व्यक्ति कभी भी भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रमण का अपराध सहन नहीं करते। जो आदर बड़े पूज्य गुरु के लिए है वो कभी भी व्यक्ति को अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं ग्रहण करना चाहिए। ढोंगी गुरु के की ओर से इसका अवलंबन करना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए बहुत जोखिम रिस्की है, बहुत घातक है। ज्ञान निरंधस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब वैष्णव का आशीर्वाद चाहते हैं कि गुरु विष्णु प्रभुपाद के संदेश को मैं सूचित कर सकें स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। आज जो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, वो पास में हैं और सबके लिए पूजनीय है। इनको स्वयं भगवान ने उपदेश दिया था ये भौतिक दुनिया से त्यागने के समय। तो प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि वैष्णव एटिकेट का अर्थ क्या होता है। विदुर और उद्धव दोनों वैष्णव हैं। विदुर जी एक शिष्य के रूप में यहाँ पर उद्धव जी से ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं, और उद्धव जी बहुत क्वालिफाइड हैं, भक्ति में आगे बढ़े हैं, भगवान के बहुत निकट के भक्त हैं, उनके पार्षद हैं। और भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ते समय उद्धव को और मैत्रेय मुनि को दोनों को उपदेश किया था। तो विशेष देखें तो दोनों को योग्यता थी गुरु बनने की। गुरु वह है जिसने भगवान से सुना है और जो दिखा सकते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि की शुरुआत में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद मुनि को प्राप्त हुआ, नारद मुनि ने ज्ञान व्यासदेव को दिया। इस तरह से जो है परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परंपरा का अर्थ है कि जो सुना है वो रिपीट करना। महाजनेरा मुखे सुनी सत्य परिणामी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे चैतन्य महाप्रभु की लीला सुना रहे थे और सुनने वालों में से एक कृष्णदास कविराज थे, और कविराज गोस्वामी ने उस नोट के आधार पर जो है ग्रंथ लिखा। आध्यात्मिक जीवन जो है वो श्रवण की विधि पर आधारित है, फेथफुल ऑरल रिसेप्शन, श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजक्षीय विधि, ये ज्ञान जो है परंपरा से प्राप्त किया जाता है। और जो व्यक्ति गुरु के संदेश को दोहराता है वो व्यक्ति गुरु बन जाता है। कई बार इस्कॉन में से इस्कॉन के बाहर ही कुछ भक्तों ने ऐसी प्रथा फैला दी कि प्रभुपाद जी के पास कोई गुरु नहीं है, जो प्रभुपाद जी गुरु है उसके बाद सबको दीक्षा प्रभुपाद जी से लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद सत्य गुरु है और कोई उस तरह पर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परंपरा जो हमेशा चलती रहती है। प्रभुपाद पुस्तक में लिखते हैं जो प्रेजेंट गुरु है जब वो ज्ञान देते हैं और जो व्यक्ति सुनते हैं और वो सुन के ज्ञान दूसरों को दोहराते हैं, तो इस तरह से परंपरा है। द प्रेजेंट डिसाइपल बिकम द स्पिरिचुअल मास्टर, वर्तमान शिष्य है वो फिर आगे गुरु बनते हैं। तो ज्ञान इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि, राजऋषि भगवान कृष्ण बताते हैं कि राजऋषि इसी प्रकार से थे, ज्ञान को सुनते दूसरे को दोहराते। ये परफेक्शन, अगर हमें समझ में नहीं भी आया कि हम क्या सुन रहे हैं, अगर हम रिपीट कर रहे हैं जो सुना है तो परफेक्शन। समझना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर समझ सके तो अच्छा है, अच्छी तरह समझा सकते हैं, अगर फिर दोहरा भी देते हैं तो परफेक्शन। इतने महाप्रभु ने हर व्यक्ति को गुरु बनने की आज्ञा दी है। अमार आज्ञा गुरु है यह सारा ही देश, प्यारे देखो तारे कहो कृष्ण प्रदेश। और जिससे भी मिलते हो उसे कृष्ण भक्ति का उपदेश करो, और मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से आप गुरु बनो और इस देश का उद्धार करो। तो इसको हमें हर डिवोटी को एक्चुअली गुरु बनना है। इसको मेरा जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु, गुरु का अर्थ यहाँ पर है कि जो कृष्ण के संदेश को दूसरों को सुना सके वो गुरु है। जैसे दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए थे तो श्रीरंगम में वो भक्त जो भगवद गीता पढ़ रहे थे उनको शायद पता नहीं था वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सुखी गुरु की आज्ञा पालन कर रहे थे। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महाप्रभु ने उनसे बताया कि आप वास्तव में गीता के अधिकारी हैं। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, जिसको गुरु में और भगवान में पूरा विश्वास है वो शास्त्रों के सारे अर्थ को समझ सकते हैं। तो मूर्ख भी क्यों ना, शास्त्रों का कंक्लूजन है कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति। भक्ति वेदांत का सही अर्थ है भक्ति, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेदांत का मतलब है ज्ञान का अंत। तो ज्ञान की जो अंतिम कंक्लूजन है वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की शरणागति। पर ब्रह्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे मोक्षयिष्यामि माशि। तो ज्ञान का कंक्लूजन है कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करना, ये स्वीकार करना कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया है उसका ज्ञान परफेक्ट है, नहीं तो जैसे मायावादी है अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन उनका निर्णय कृष्ण की शरणागति नहीं होता, उनका निर्णय होता है कि हम स्वयं भगवान हैं या भगवान बन सकते हैं, ये वास्तविक कंक्लूजन है कि कृष्ण भगवान अनंत कृष्ण के त्रिलोक है। तो जो शिष्य है कहते हैं कि जो ये ज्ञान को सुनता है और फिर दोहराता है। महाप्रभु जब ब्राह्मण से मिलते हैं, ब्राह्मण उनसे कहता है कि मेरे मत में आप वही कृष्ण हो, जिन्होंने भगवदगीता का उपदेश किया वो कृष्ण आप ही हो। महाप्रभु उनको बोलते हैं ये बात सत्य है, लेकिन किसी को बताना मत। महाप्रभु उनको अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं जिनके बहुत रेयर है। तो जितना शास्त्रों का ज्ञान हो सके उतना ग्रहण करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका निष्कर्ष जानना चाहिए। निष्कर्ष है कि कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर। तो बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। जब वामन देव आए तीन कदम जमीन मांगने लगे, शुक्राचार्य बोले थे मत दो मत दो, ये भगवान विष्णु है। बलि महाराज अगर विष्णु है तो बहुत अच्छा है, सब कुछ तो विष्णु के लिए, आप मेरे गुरु होकर मना कर रहे मुझे, यू आर नॉनसेंस गुरु, आई रिजेक्ट क्लासिकल गुरु। ऐसे गुरु से क्या फायदा जो कृष्ण से दूर ले जाए। गुरु न सस्या, पिता न सस्या, जननी न सस्या। किसी को गुरु और माता पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर अपने डिपेंडेंट को भवसागर से पार नहीं ले जा सकते। कई गुरु कई माता कई पिता जो कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए, वही माता है वही पिता है वही गुरु है। जैसे मुकुंद और रघुनंदन की कहानी में आता है कि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मुकुंद से कि तुम पिता हो और रघुनंदन तुम्हारे पुत्र हैं, या रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके पुत्र हो, क्या सही है? तो मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन ने मुझे कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दी है, इसलिए वो मेरे पिता हैं। और महाप्रभु उनके उनके वाक्य को सपोर्ट करते हैं कि जो व्यक्ति हमें उपदेश करता है कृष्ण भक्ति के बारे में वही हमारे पिता है, आध्यात्मिक पिता। तो यहां पर एक पॉइंट श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, एटिकेट के अनुसार मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मर्यादा व्यतिक्रमण का अर्थ है कि मान लो मुझे बहुत कोई चीज का ज्ञान है और कोई दूसरे श्रेष्ठ या मेरे से जो सीनियर व्यक्ति बोल रहे हैं, तो मैं अगर अपनी बुद्धि बताने के लिए यस मैं ज्यादा अच्छा जानता हूं, मैं अगर से सोचता हूं कि मैं उपदेश कर सकता हूं, तो वो मर्यादा व्यतिक्रमण हो जाता। अगर हमें ज्यादा अच्छा आइडिया हो भी तो भी अगर कोई हमारे से सीनियर है, अगर वो दिव्य ज्ञान देने की स्थिति में है, तो उसको अवसर देना चाहिए। अफकोर्स अगर उनकी आज्ञा हो तो उनकी आज्ञा से हमें बोलना चाहिए। मर्यादा व्यतिक्रमण से मैं बताया गया कि सब कुछ व्यक्ति खो बैठते हैं, आयु ऐश्वर्य और आशीर्वाद सब कुछ खो बैठते हैं अगर वो मर्यादा का व्यतिक्रमण करते हैं। यहां पर विशेष करके बताया गया क्योंकि उद्धव जी उम्र में विदुर से छोटे हैं। विदुर जी जो है उद्धव के पिताजी के समान है, क्योंकि उद्धव और कृष्ण समवयस्क हैं और कृष्ण और पांडव समवयस्क हैं, जबकि उद्धव और पांडव समवयस्क हो जाते हैं। और पांडवों के पिता महाराज पांडु हैं और महाराज पांडु और विदुर भाई हैं। तो एक देखा है तो उद्धव विदुर के चाचा के समान है उम्र में। तो ज्ञान ग्रहण करने में हालांकि एज का कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर दोनों व्यक्ति हों तो जो उम्र में ज्यादा है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो भक्ति चर्चा महाराज अपने वैष्णव जी के में बताते हैं कि दो तीन कंसिडरेशन हैं डिसाइड करने के लिए दिव्य ज्ञान कौन व्यक्ति दे। उसमें एक है उम्र, जिस व्यक्ति की उम्र ज्यादा है सादर किया जाता है। दूसरा है आध्यात्मिक उम्र, यानी कितने समय से वो भक्ति में आए हैं। और तीसरा है उसकी आध्यात्मिक प्रगति, और चौथा है उसका आश्रम। तो सन्यासी उसका आश्रम सबसे उल्टा माना जाता है। उद्धव जी सोच रहे थे कि मैं ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन मैत्रेय मुनि यहां पर पास नहीं है और मैत्रेय उम्र में बड़े भी हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि ऐसे मुनि से आप दिव्य ज्ञान ग्रहण करो। उनको सुविधा नहीं होती कि आओ मेरे पास आओ सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज आई एम द ओनली वे। तो उनको ये सुविधा नहीं होती कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़े। चौथा ही लिखते हैं वन शुड नॉट बिकम स्पिरिचुअल मास्टर फॉर सिंपली नेम एंड फेम। प्रसिद्धि के लिए गुरु बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वास्तव में गुरु बनना एक सेवा है। एक बार राजा नाथ महाराज बता रहे थे कि मैं जब पहले था तो मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि मेरा जीवन ज्यादा अच्छा था। मेरे शिष्यों को स्वीकार करना एक तरह का बोझा था जो कि क्योंकि अगर आज्ञा दी जाए तो स्वीकार करना चाहिए लेकिन उत्सुक नहीं होना चाहिए। उत्सुक होना चाहिए सेवा के लिए। सेवा हो सकती है गुरु बनना सेवा है और ऐसे शिष्य बनना सेवा है भव लगाना सेवा है। महाराज जी बता रहे थे कि मैं पहले वृंदावन में था और वहां पे गायों का ख्याल रखता था और मैं जानता ही नहीं था मैं कहां पर हूं। रोग प्रभुपा जी की सेवा थी अभी प्रभुपा जी ने दूसरी सेवा दी है तो दोनों ही सेवा है। जिस प्रकार से मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं वही 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 मेरा जीवन है। भक्त अटैचमेंट पोस्ट से नहीं होता कि मेरे गुरु की पदवी है। ऐसे में गुरु का मतलब होता है दास जो सब का दास बनने को तैयार है। ऐसे में प्रेरणा देती सुनी थी गुण है वो व्यक्ति वास्तविक गुरु है। गुरु श्रेष्ठ है मैं महान हूं वो गौरव बन जाते पशु बन जाते। सिद्धांत ठाकुर इस बात पर बहुत जोर देते थे। उनका फेमस वाक्य था कि मैं यहाँ पर बड़े आसन पर बैठा हूँ और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं मेरे को होमी जी दफर कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं क्यों ये कुत्ता ऊपर बैठा हुआ है लेकिन वास्तव में मेरी पूजा को स्वीकार कर रहा हूँ कुछ लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे भगवान कृष्ण का आदर किया जाता है। इसमें से कोई भी चीज मेरे लिए नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस है टीचर की कि मैं दास हूँ प्रेरणा बच्चे सुनिश्चित में और जिससे मेरी चेतना होती है कि मैं दास हूँ वो भगवान का ज्ञान दूसरों को देने के लिए योग्य बन सकते हैं। श्रीमती यहाँ पर लिखते हैं कि जो आदर एल्डरली पर्सन एल्डरली गुरु के लिए है वो स्वयं ग्रहण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक प्रसिद्धि या लाभ प्राप्त करने के लिए। और अगर इस सत्य को नहीं स्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं हमेशा उत्सुक हूँ ज्ञान ग्रहण करने के लिए और एक सेवा के रूप में व्यक्ति शिष्य स्वीकार करता है। शिष्य स्वीकार करना एक बर्डन होता है बोझ लेकिन एक बर्डन ऑफ लव है यदि भगवान की आज्ञा है तो वो स्वीकार करना चाहिए। तो मेरे एक लेक्चर में इसमें राजा महाराज बता रहे थे जैसे जब दीक्षा सेरेमनी होती है बता रहे थे कि 108 भक्त थे दीक्षा सेरेमनी में तो ये 108 जो है ये आइटम्स है जो कि भगवान राधा गोपीनाथ को अर्पण किए जा रहे हैं। शिष्य कभी गुरु कभी सोचता नहीं है कि शिष्य भी मेरी प्रॉपर्टी हो गई ऐसे ज्यादा शिष्यों को ज्यादा डोनेशन मिलेगा तो भक्ति करें नहीं करें। अभी मैं इधर नासिक जा रहा था शिरडी होकर आया मैं अंदर दर्शन पे नहीं गया था टास्क कर रहा था तो वहां पर मैं पूछ रहा था कि क्या फिलोसफी है तो लोगों के पास कोई साफ फिलोसफी नहीं है लेकिन वो उसे ब्लाइंड लोग फॉलो कर रहे हैं अंधेपन से। सूडो स्पिरिचुअल मास्टर को बोलते हैं कि कैसा विश्वास है और जो वहां के तथाकथित टीचर भी हैं वो अनुयायियों को बढ़ाने की संख्या में बढ़े हैं। एक सच्चे गुरु जो है वो उसकी इच्छा नहीं होती कि मेरे ज्यादा अनुयायी हों। चैतन्य महाप्रभु बोले न जन्म न जन्म और जन्म का अर्थ है फॉलोअर अनुयायी। जब भक्ति ज्ञान ठाकुर को प्रणाम करता तो बदले में कहते दास हूं मैं सेवक हूं। ये सदगुरु की भावना है कि मैं तो सिर्फ दास हूं मैं तो सिर्फ कंगाल हूं मैं सिर्फ कृष्ण ही मूल व्यक्ति हूं और मैं सिर्फ कृष्ण के संदेश को दूसरों को पहुंचा सकता हूं। एक सदगुरु जो है वो एक पोस्टमैन की तरह होते हैं पियोन की तरह। जैसे पोस्टमैन या पियोन कोई पत्र को लेटर लाकर देता है वैसे ही सदगुरु जो है वो जो उन्होंने अपने गुरु के मुख से सुना है वो रिपीट कर लेते। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते को लिए आइट आर न करी हो मैंने आशा। जो गुरु के मुख कमलों से वाणी निकलती है वही चित्त को शुद्ध कर सकती है, चित्त को आशा देने वाली, और कोई चीज की आशा नहीं करनी। गुरु की कृपा जो है उनके शब्दों से प्रकट होती है, वाणी और वाक्य। वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वाणी के द्वारा हम गुरु की उपस्थिति का अनुभव हर समय कर सकते हैं। हो सकता है फिजिकली श्री प्रभुपाद हमारे साथ नहीं हो इस समय, लेकिन जहां पर भी श्री प्रभुपाद जी का संदेश पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है या आज्ञा पालन की जा रही है वहां पर श्री प्रभुपाद हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते थे आई विल नॉट डाई आई विल लिव इन माय बुक्स। मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं अपनी पुस्तकों के रूप में हमेशा अध्ययन करता रहूंगा मानवता को। जब हम भगवद गीता के संदेश को पढ़ रहे हैं तो हम वास्तव में कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति में हैं। जो सिंसियर डिवोटी भगवद गीता के पेजेस को पढ़ता है उसमें भागवत है, उसको हर समय नए नए अर्थों का आस्वादन होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त के सुनने की उत्सुकता के साथ विस्फोटित कर रहे आदान प्रदान कर रहे होते हैं। महाप्रभु की लीला में स्वयं महाप्रभु ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और केशव भारती संन्यास लेते हैं। हालांकि केशव भारती अपरेंटली मायावाद संप्रदाय में होते हैं, चैतन्य महाप्रभु महत्व दिखाना चाहते थे और संन्यास लेना चाहते थे, इसलिए जिससे कि लोगों का आदर करें और उनके संदेश को गंभीरता से ग्रहण करें। आज मैं थोड़ा सा मुकुंद दत्त के बारे में बोलना चाहूंगा। आज उनका आविर्भाव दिवस है, तिरुभाव दिवस है, आज स्नान यात्रा भी है। स्नान यात्रा का अर्थ है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक दिन जगन्नाथ पुरी में जो अच्छे विग्रह हैं उनको बाहर लाया जाता है। आनंद बाजार के पास में ये जगह है, यहाँ पर अल्टर बना हुआ है, वहां पर उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक रोज होते हैं लेकिन आज के दिन पब्लिक अभिषेक होते हैं जो सब देख सकते हैं। स्नान यात्रा शायद आप मेरे फोटोज देखेंगे, स्नान यात्रा से भगवान जगन्नाथ के महाराज के रूम में। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय थे, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय, और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में डिवोटीज जाते हैं ये दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथपुरी के वासी भी आज दर्शन के लिए विशेष उत्सुक होते हैं, क्योंकि आज के दर्शन के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, करीब 15 दिन के लिए। इसे रथ यात्रा 16 जुलाई को है अगले महीने, और 28 तारीख यानी करीब 15 या 16 दिन के लिए अब दर्शन नहीं होंगे। इसको अनवसर पीरियड कहते हैं, अनवसर भगवान जगन्नाथ के दर्शन आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जो भगवान जगन्नाथ के क्लोज पुजारी हैं वो दर्शन करने जाते हैं। महाप्रभु जब धरती पर लीला कर रहे थे तो उनको बड़ा दुख लगता था भगवान के दर्शन न होने के कारण, और वो जगन्नाथपुरी छोड़ के अलालनाथ चले जाते। अलालनाथ में भगवान का द्वितीय रूप है, अलवरनाथ जो एक्चुअली चतुर्भुज रूप है लेकिन वो जगन्नाथ से अभिन्न है, वास्तव में जगन्नाथ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में चले जाते और वहीं पर विरह में समय बिताते। और जब उनका समाचार मिलता है कि नवद्वीप के कुछ भक्त जगन्नाथपुरी आ रहे हैं रथ यात्रा के लिए, तब चैतन्य महाप्रभु बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे मिलने के लिए वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। तो नेत्रोत्सव बोलते हैं जब बाद में भगवान के श्री दर्शन होते हैं। स्नान यात्रा के बारे में श्री गौर गोविंद सिंह महाराज ने क्वेश्चन दिया था, ये थोड़ा सा याद है, जितना मुझे याद है मैं बोलने का प्रयास करूंगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा ये भगवान का जो है आविर्भाव दिवस माना जाता है। तो अभी आप सोचेंगे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी होता है, तो ये कैसे भगवान का आविर्भाव दिवस हो गया। इसके बारे में बताया गया है कि जगन्नाथ का आविर्भाव दिवस जो है आज के दिन हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। उसके पीछे दो कहानियां हैं। एक तो जो भगवान कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं ब्रजवासियों को बहुत दुख भी होता है, और उसके बाद मथुरा के बाद वो उसे द्वारिका जाते हैं और कुछ समय तक वो द्वारिका में रहते हैं। तो एक दिन द्वारकावासी कृष्ण की रानियां, कृष्ण के माता देवकी सब रोहिणी से प्रश्न पूछते हैं कि आपने कृष्ण की वृंदावन लीला देखी है तो आपकी लीला हमें सुनाइए। रोहिणी देवी कहती है कि मैं लीला सुनाने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि किसी न किसी को दरवाजे पर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यह लीला इतनी आकर्षक है कि स्वयं भगवान आकर्षित हो जाएंगे। अगर कृष्ण बलराम ये सुनते हैं कि उनकी लीलाओं का गान हो रहा है तो दौड़ते हुए आ जाएंगे। इसलिए किसी को दरवाजे पर रहना चाहिए। सुभद्रा देवी स्वीकार करते हैं ये सेवा को, दरवाजे पर गेट कीपर की तरह होते हैं, जिससे उनको बताया जाता है कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो संदेश देना, कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। तो रोहिणी देवी बोलना शुरू करते हैं और आप जानते हैं ब्रज की लीला सबसे ऊंची लीला है, वृंदावन लीला। और ये सुनते हुए सुभद्रा माई के आंखें बहुत विशाल हो जाते हैं, जो आप जगन्नाथ के रूप में देखते हैं, उनके अंग जो है अंदर चले जाते हैं, उनके हाथ और उनके पैर बिल्कुल एक्सेसिव की अवस्था में। और उस समय कृष्ण और बलराम वे आते हैं और देखते क्या चल रहे हैं, वे तो लीला है वृंदावन लीला, तो सुनकर बहुत आकर्षित होते हैं और वो दरवाजे के पास कान लगा के सुनने लगते हैं। बीच में सुभद्रा एक तरफ, जगन्नाथ दूसरी तरफ बलराम जी, वो इंग्लिश में ईव ड्रॉपिंग संक्षिप्त कर सुनना, जिसका भगवान कृष्ण से शुरू होता है, जन्मार जिसका कोई चीज नहीं सुनने वो भी सुनना, सब प्रवृत्ति है भगवान से है। कृष्ण ओरिजिनल चोर है, माखन चोर, लेकिन कृष्ण चोरी करते हैं तो उनका गुणगान है। तो कृष्ण बलराम सुभद्रा सब मग्न होते हैं सुनने में, और थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और नारद मुनि को देखकर फिर कृष्ण बलराम अपने पूर्ण रूप में आते हैं। तो नारद मुनि एक्सेस में बोलते हैं कि मैंने देख लिया, मैंने ये रूप देख लिया, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धरती पर ऐसा कोई स्थान हो जहां पर आपका यह रूप सब भक्तों को दिखाई पड़े, सब भक्तों को दर्शन हो। उनकी इच्छा को भगवान पूर्ति करते बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में मेरा यह रूप सबको दर्शन होगा, जगन्नाथपुरी में नीलाचल समुद्र के किनारे मैं जगन्नाथ के रूप में यह दर्शन सबको प्रदान करूंगा। तो ये लीला जो है स्नान यात्रा के दिन की है, जब भगवान जगन्नाथ के इस रूप प्रकट हुआ। और ये कहानी श्री गौर गोविंद महाराज बताते हैं, मुनि वृंदावन में ये कहानी राधाना स्वामी महाराज को बताई थी, बहुत लंबी कहानी है। और शॉर्ट में जब भगवान कृष्ण द्वारिका में होते हैं और द्वारकावासियों से विरह में बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं, जो ब्रजवासियों से बिलख विरह में, और उस समय कृष्ण के दुख को दूर करने के लिए बलराम उद्धव जी और नारद मुनि एक योजना बनाते हैं, एक सलाह देते हैं कि हम कृष्ण को एक बार वृंदावन ले जाएंगे और कृष्ण ब्रजवासियों के देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उनका दुख दूर हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे द्वारका। उस समय बलराम जी बताते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि अब ब्रजवासियों की अवस्था बड़ी विदीर्ण है, उनकी अवस्था ऐसी है जैसे पेड़ से सूखी हुई पत्तियां जमीन पर गिरे होते हैं, उनके प्राण मुश्किल से बनाए जा रहे हैं, मरणासन हो गए, बिल्कुल दुखी अवस्था में है। इसलिए अगर कृष्ण भी गए वृंदावन में और ब्रजवासियों के दुखमय अवस्था को देखा तो फिर कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि कृष्ण जाएं वृंदावन लेकिन तुरंत लौट करें, मुझे कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए हमें ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे जब कृष्ण वहां पर जाए तो सारे ब्रजवासियों को अच्छी अवस्था में देखें। नारद मुनि सुझाव देते हैं कि कोई एक व्यक्ति जाकर ब्रजवासियों को संदेश दे कि कृष्ण आ रहे हैं। और जब कृष्ण के आने का समाचार वे सुनेंगे तो ब्रजवासी बहुत प्रसन्न अवस्था में होंगे और कृष्ण उनको मिलकर वापस लौट कर आएंगे। हरी हरी बीमारी तो बोली हरी हरी। गर्मी बहुत दुख देने वाली होती है लेकिन ठंडे मौसम में नींद बहुत आती है, दोनों ही अच्छी है। कृष्ण आ रहे हैं ये समाचार देने के लिए नारद मुनि उद्धव जी को बोलते हैं, उद्धव जी तुम जाओ क्योंकि तुम कृष्ण के समान हो दिखने में भी, तुम ब्रजवासियों को जाकर समाचार दो कि कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा पालन करने के तैयार हूं लेकिन मैं थोड़े समय पहले गया था और मैंने समाचार मैं उनसे 2 महीने ब्रजवासियों के साथ में रहा और उस समय मैंने सांत्वना देते हुए तुमको ये बताया था कि मैं कृष्ण को भेजूंगा लेकिन मैंने लौट कर आकर कृष्ण को बताया और कृष्ण नहीं गए। अगर मैं फिर से जाऊंगा बोलूंगा कि कृष्ण आ रहे हैं तो कौन भरोसा करेगा। कहानी है कि एक गांव में कुछ लोग जो ऐसे गलत समाचार फैलाते हैं कि शेर आ गया तो शेर नहीं आता, दूसरे बोलते शेर आ गया शेर होता नहीं सब डर जाते, दूसरी बार वो सही में शेर आ जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता और सही में सोचता कोई मजाक कर रहे हैं तो सब कुछ जानते जाते। तो मैंने एक बार कहा कि कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण नहीं आए और मैं दूसरी बार जाकर किस मुझसे बताऊं तो मेरे भरोसा नहीं करेंगे। नारद मुनि बोले बलराम जी आप जाइए। बलराम जी बोले मैं भी गया था थोड़े दिन पहले, मैं भी ब्रज में गया था कृष्ण की अनुपस्थिति में उनको सांत्वना देने के लिए, इसलिए अगर मैंने जो सही बताया था कि कृष्ण को भेजूंगा और मैंने कृष्ण को बताया भी हरी हरी मैंने कृष्ण को बताया भी लेकिन कृष्ण नहीं आए, इसलिए अगर मैं फिर से कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कृष्णदेव देवी ने अपने आप को सुझाव दिया कि मैं जाने को तैयार हूं क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं सरल स्वभाव की हूं, मेरे पर भरोसा करेंगे, मैं स्वयं जाऊंगी और समाचार दूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं।